الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأصوات لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورة الفرقان کی تفسیر ہم اس کلاس میں معرف القرآن والیوم نمبر 6 سے پڑھ رہے ہیں. ایک بس ریمائنڈر اس کلاس سے متعلق کہ یہ کلاس آن لائن ہے. عمومی طور پر لوگ اکیلے ہی بیٹھے ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. استاد آپ کو نہیں دیکھ سکتا، دوسرے طالب علم آپ کو نہیں دیکھ سکتے، یعنی غیر آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے یہ قرآن کی کلاس ہے، دین کی کلاس ہے، تو اس کے اندر ادب کا خیال رکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ادب سے بیٹھیں، باوضو بیٹھیں تو سب سے زیادہ اچھی بات باوضو بیٹھنا ہی ہے. اور یعنی لیٹ کر کے سننا اگر کوئی مجبوری ہے تو وہ اور بات ہے، لیکن ادروائز لیٹ کر کے سننا اور ٹیک لگا کر کے سننا یہ سب قرآن کی بے ادبی میں شمار ہوتی ہیں. تو چاہیے کہ غور سے، توجہ کے ساتھ اور ادب سے بیٹھ کر کے اس کلاس کو لیا جائے. اس کلاس کے اندر کوشچنز اور آنسرز اوپن ہوتے ہیں چیٹ ونڈو کے ذریعے سے. تو جو لوگ زوم کے اوپر لاگ ان ہیں تو وہ کوشچنز کر سکتے ہیں چیٹ ونڈو پہ لکھ کر کے، اور جیسے موقع ملے گا تو اس کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. اس کے علاوہ یہ کہ ریکارڈنگز الحمدللہ ان کلاسز کی لوگ کر رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے. ریکارڈنگز کرتے بھی ہیں، اس کو گروپس کے اوپر پوسٹ بھی کرتے ہیں اور ویب سائٹ کے اوپر بھی ہر ریکارڈنگ کو پوسٹ کر دیا جاتا ہے. تو جن کی پچھلی کلاسز مس ہو گئی ہیں یا دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو ویب سائٹ پہ جا کر کے ان لنکس پہ کلک کر کے آسانی سے ساری ریکارڈنگ سنی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ بھی جو 2 سال سے ہماری آن لائن کلاس کے سلسلے چل رہے ہیں تو کئی دوسری صورتوں کی تفسیر بھی ہماری ویب سائٹ کے اوپر پڑی ہوئی ہے، چاہیے کہ ان کو سنا جائے. اور چونکہ یہ ایک یعنی ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کا ٹیچر کے ساتھ ایک رابطہ بھی ہو سکتا ہے واٹس ایپ کے اوپر، تو اس میں ڈفرینس یہ ہے دوسری تفاسیر جو کہ آن لائن موجود ہوتی ہیں، بہت بڑے بڑے علماء کی موجود ہیں، لیکن یہاں پر بس اتنا فرق ہے کہ اگر آپ کو کوئی سوال ہوگا تو ٹیچر بھی اویلیبل ہیں، ان سے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو دوسری چیز یہ کہ ایک ریکویسٹ تھی کہ جو لوگ ہمارے واٹس ایپ گروپس کے اوپر آئے ہوئے ہیں مینز اور ویمنز گروپ کے اوپر، تو اگر وہ چاہیں تو اپنا کانٹیکٹ یعنی نیم اور اگر مناسب سمجھیں کہ وہ کہاں رہتے ہیں، کس شہر میں رہتے ہیں، تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ اگر اساتذہ کو بھیج دیں تو ہم آپ کو اپنے پاس پھر کانٹیکٹس میں سیو بھی کر لیں گے اور اپنی دیگر کلاسز کی انفارمیشن بھی آپ کو بھیج دیا کریں گے انشاءاللہ. اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا صرف نمبر ہے اور کوئی نام پتہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس، تو اگر آپ چاہتے ہیں کچھ فیوچر میں بھی کانٹیکٹ میں رہنا تو اپنا فل نیم اور سٹی آف ریزیڈنس جو ہے وہ سارے اس کو بھیج دیں تو اس کو سیو کر لیا جائے گا انشاءاللہ. اس کے ساتھ ہم اپنی کلاس کو آگے بڑھاتے ہیں کہ یہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں آیت نمبر 4 سے لے کر 9 تک، اس کی تفسیر کے تحت ہم اس مضمون کو ڈسکس کر رہے تھے کہ انہوں نے یعنی جو کافر تھے، کافروں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر 2 بڑے بڑے اعتراض کیے تھے جن کو معرف مسائل میں انہوں نے پہلا اعتراض اور دوسرا اعتراض کی ہیڈنگ دے کر کے لکھا ہے. پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو چیزیں ان لوگوں کو بتا رہے ہیں قرآن کے نام سے، تو یہ باتیں جو ہے نا یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ سچی باتیں نہیں ہیں. تو یہ پہلا اعتراض تھا کہ ہمیں خدا کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے، خدا کی بات ہوتی تو ہم ضرور مانتے، ہم تو خدا کو اپنا خالق بھی مانتے ہیں، رازق بھی مانتے ہیں اور سب سے بڑا مانتے ہیں خدا کو، باقی خداؤں کو بھی مانتے ہیں لیکن وہ چھوٹا مانتے ہیں، اس خدا کو ہم سب سے بڑا مانتے ہیں جو کہ خالق اور رازق ہے. لیکن مسئلہ سارا ہمارا خدا کے ساتھ ہے ہی نہیں، ہمارا مسئلہ تو نعوذ باللہ اس آدمی کے ساتھ ہے جو کہ دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ خدا کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور یہ جو چیزیں ہمیں بتا رہا ہے تو وہ خدا کے ہم ٹھیک ہے۔ تو یہ بات کری تھی، دوسرا اعتراض جو تھا وہ رسول کے پھر ذات کے اوپر اعتراض تھا، ٹھیک ہے، کہ بھائی یعنی اب جو ہے وہ مزید اس کے اوپر لاجک پیش کر رہے ہیں یہ کافر لوگ کہ اگر یہ رسول ہوتے، خدا کے رسول ہوتے، تو پھر ایسے ایسے کیوں ہوتے اور ایسے ایسے کیوں نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب جو ہے نا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر اعتراضات ہیں، تو ان اعتراضات کے بارے میں ہم نے یہ جو لکھا ہے انہوں نے وہ تو ہم نے پڑھ لیا ہے، تو ان کو اگر ہم الگ الگ لے کر کے پھر ڈسکس کریں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ یہ محتاج کیوں ہیں، ہے نا، کہ ان کو بھوک کیوں لگتی ہے، کھاتے کیوں ہیں، کھانے کی ضرورت بھوک لگنے پر پڑتی ہے، ہماری طرح کوئی تھوڑی کہ ہم جو ہے وہ بغیر بھوک لگے کھاتے ہیں، ہمارے تو دور کے اندر مسئلہ یہ ہے نا ہمارا کہ ہم بغیر بھوک لگے چگتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک نارمل آدمی، ہم نارمل نہیں ہیں، یہ بات ہمیں مان لینی چاہیے، تو نارمل آدمی جو ہے وہ بھوک لگنے کے اوپر کھاتا ہے، تو ان کو بھوک لگتی کیوں ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو کھانے کی احتیاج، کھانے کی محتاجی ہوتی کیوں ہے، اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو کیوں ہوتی ہے، اور دوسری چیز کہ ان کے اوپر جو ہے وہ یعنی دوسری ذمہ داریاں کہ جن کے پورا کرنے کے لیے ان کو بازاروں میں جانا پڑتا ہے، اور بازاروں میں تو پھر آپ کو پتہ ہے جو اکانومی پڑے ہوئے لوگ ہیں، فائنانس کے لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ مارکیٹ کس طرح سے ڈرائیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہوتی ہے، کسی کو ضرورت پڑتی ہے، نیڈز ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی، باقی لوگ ان نیڈز کو فلفل کرتے ہیں، یہ سارے اکانومسٹ جو ہیں وہ ساری چیزیں پڑھتے ہیں، رائٹ، تو یہ بازار جاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہی از نیڈی، ہی نیڈز ادر پیپل ٹو پرووائڈ ہم سروسز، ٹو پرووائڈ ہم پروڈکٹس اینڈ مٹیریل، ٹھیک ہے، تو یہ محتاجی۔ اب محتاجی کے بارے میں کل ہم نے بات کری تھی کہ یہ جو محتاجی ہے، یہ محتاجی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی کمزوری تھی ہی نہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہے نا ایک دم ڈفرینٹ اینگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، ٹھیک ہے، کہ بھائی خدا کا رسول جو ہے نا تو وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے، وہ فرشتوں کی طریقے سے ایسا ہونا چاہیے کہ جو کوئی یعنی جس کو کوئی محتاجی نہ ہو، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ روحانی دنیا کی چیز ہے، اس کے اندر جو ہے نا وہ یعنی مادی دنیا اور یعنی اس کے اندر کوئی فزیکل اس کی نیڈز ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ فزیکل چیزوں سے بنا ہی نہیں ہے، وہ تو روحانی ایک کمپوزیشن ہے اس کی، نور سے بنا ہے فرشتہ، ٹھیک ہے، تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا رسول بھی ایسے ہی ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول جو ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں بنائے ہیں، فرشتوں میں نہیں بنائے۔ اس کے اوپر کسی نے سوال کچھ بھیجے ہیں، پتہ نہیں وہ کلاس میں ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ان کے سوالات میں بہت تفصیل ہے، تو وہ تو سارا کا سارا شاید میں بیان نہیں کر سکوں اس کا جواب، لیکن اس کا ایک جواب یہ ہے کہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ فرشتے جو ہیں وہ یعنی عبد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہم سوال کرنے والے نے یہ کہا کہ جی فرشتوں کے اندر عبودیت جو ہے وہ کامل ہے، عبودیت کامل ہے فرشتوں کے اندر، ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ یعنی سوال تو ایکچولی کافی ذرا تفصیلی ہے، تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ فرشتے جو ہے نا وہ عبد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صرف دا فیکٹ کہ فرشتے عبادت کرتے ہیں اس سے وہ عبد ہی بن جاتے ہیں، یہ ایک مس پرسپشن بھی ہو سکتی ہے سوال کرنے والے کے ذہن میں کہ فرشتوں کے اندر عبادت جو ہے نا وہ کامل ہے، کیونکہ فرشتوں کے بارے میں ہم نے یہی سنا ہے کہ وہ عبادت کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور عبودیت جو ہے تو وہ تو عبد یعبدو سے بنی ہے، اور اس کا اسم فاعل جو ہے وہ تو عابدن ہوتا ہے، یعنی عبادت کرنے والا، اور فرشتے عبادت کرتے رہتے ہیں، فرشتے کیا صرف عبادت کرتے رہتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کی عبادت سے مراد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم کس چیز کو عبادت کہتے ہیں، کس چیز کو عبادت کہتے ہیں، نماز پڑھنے کو عبادت کہتے ہیں، سجدہ کرنے کو عبادت کہتے ہیں، رکوع کرنے کو عبادت کہتے ہیں، قیام میں کھڑے رہنے کو عبادت کہتے ہیں، تشہد میں بیٹھے رہنے کو عبادت کہتے ہیں، کیا یہ صرف عبادتیں ہیں، تو اگر یہ عبادت ہیں تو فرشتے تو یہ ساری عبادتیں نہیں کرتے، کچھ فرشتے صرف سجدہ کرتے ہیں، صرف سجدہ،
کچھ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے بنائے, کچھ سے مراد لاکھوں کروڑوں ہوں گے, لیکن فرشتوں کی ایک کیٹیگری صرف سجدے کے اوپر, رائٹ, ایک کیٹیگری فرشتوں کی صرف رکوع کے اوپر, ایک کیٹیگری فرشتوں کی صرف قیام کے اوپر, ایک کیٹیگری فرشتوں کی صرف تشہد کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور یہ سب ہو گئے نماز کے اعمال. اب باقی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ نہیں کرتے. باقی فرشتے کیا کرتے ہیں؟ جس کو بارش برسانے کا کام لگایا گیا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم لیتے ہیں, آ کر کے پھر بادلوں کو نچوڑتے ہیں, اور بادلوں کے نچوڑنے سے جو اس کے اندر سے پانی کے قطرے نکلتے ہیں, ایک ایک قطرے کو لے کر کے زمین پر آتے ہیں, ایک ایک قطرے کو ایک ایک فرشتہ لے کر کے زمین پر آتا ہے. یہ ان فرشتوں کی عبادت ہے جو بارش برسانے کا کام جن کے ذمے ہے, یہ ان کی عبادت ہے. وہ سجدے کے اندر نہیں لگے رہتے, وہ نماز کے افعال والی عبادت نہیں کر رہے ہوتے, وہ یہ والی عبادت کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اللہ کے حکم کی ایگزیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ اللہ کے حکم کی ایگزیکیوشن کر رہے ہوتے ہیں, یہ ان کی عبادت ہے. اسی طرح عام مشہور فرشتے, انسانوں کی جان نکالنے والے, وہ کون سا عبادت کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ سجدے اور یہ سب کر رہے ہوتے ہیں. ان کو تو مستقل یہ حکم لگا ہوا ہے کہ جا کر کے کسی انسان کی جان نکالو, اور انسان تو پھر دنیا کے اندر تھوڑے ہیں, رائٹ. یہ جو جتنے جانور ہیں, جتنے کیڑے مکوڑے ہیں, جتنے حشرات الارض ہیں, جو کچھ بھی ہے, زی روح جس کو کہا جاتا ہے, رائٹ, اور وہ جانور بھی ہیں زی روح. تو فرشتوں کا کام جو ہے, جو جان نکالنے والے فرشتے ہیں, تو وہ تو ان کی جان نکالنے کے کام کے اوپر مامور ہے, رائٹ. تو ہر قسم کا جو کام ہے نا, وہ فرشتوں کی عبادت ہے, لیکن اس سے وہ عبد نہیں بن جاتے. عبد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ عبد کی ڈیفینیشن کسی کو پتا ہے؟ تو آپ ذرا کوئز بھی تو چلتا رہے نا کلاس میں, پارٹیسپیشن بھی ہوتی رہے گی. عبد کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ڈیفینیشن بتائیں. ہم یہ وہ والی بات نہیں پوچھ رہے آپ سے جو ہم آپ کو پچھلی کلاسوں میں سمجھا چکے ہیں کہ عبد کیسا ہونا چاہیے, وہ نہیں پوچھ رہے, گول نہیں پوچھ رہے عبد کا, عبد کی ڈیفینیشن پوچھ رہے ہیں, تعریف پوچھ رہے ہیں عبد کی, ٹھیک ہے, جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. ہر حکم ماننے کو عبادت کہتے ہیں. جی, اطاعت, محبت کے ساتھ اطاعت. اور یہ ذرا میوٹ کر کے رکھیں اپنے مائک کو. جبرائیل علیہ السلام کو روح الامین کہتے ہیں. امین کا تو پتہ ہے, روح کا, روح کیوں کہتے ہیں, روح کیوں کہتے ہیں؟ بھائی اللہ تعالیٰ نے روح تو, یعنی اللہ تعالیٰ نے روح تو پھونکی ہے نا ہر چیز کے اندر, جبھی تو وہ چیزیں موو کرتی ہیں پھر, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے نور سے فرشتوں کو بنایا, لیکن نور جو ہے وہ حرکت کرنا کیسے شروع ہوتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھونکی ہوئی روح کے ذریعے سے حرکت کرنا شروع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. بالکل جس طریقے سے انسانی بدن جو ہے, جب مدر فادر کے انٹریکشن سے جب بدن بن جاتا ہے نا, تو 120 دن کے بعد ایک فرشتہ آ کر کے اس کے اندر روح پھونکتا ہے, تب وہ ہلنا جلنا شروع ہوتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا, مٹی کا پتلا, لیکن وہ ہلنا جلنا کب شروع ہوئے, بات چیت کرنا کب شروع ہوئے؟ جب اس کے ان کے اندر روح پھونکی گئی. اب وہ مٹی سے جو ہے وہ گوشت پوشت میں کنورٹ ہو گئے, اور وہ اپنے طور پر پھر موو کرنا شروع ہو گئے, ٹھیک ہے. تو روح کا, روح الامین ان کو کہا جاتا ہے, کہ بھائی وہ روح ہیں اور بالکل امین ہے, سب سے بڑے امین وہی ہیں, ٹھیک ہے, فرشتوں کے اندر. تو عبد کی ڈیفینیشن پوچھی تھی. عبد از بشر, سرونٹ, غلام, مالک کی مرضی کے ساتھ سپردگی, عبادت. نہیں نہیں, یہ سب آپ جو ہے نا وہ گولز بتا رہے ہیں. عبد کی میں تعریف پوچھ رہا ہوں, گولز نہیں پوچھا کہ عبد ہونا کہتا چاہیے. عبادت گزار بندہ, عبادت کرنے والا بندہ, حکم ماننے والا, ہمیشہ قائم رہنے والا, ہر حال میں اطاعت کرنے والا, اطاعت کرنے والا, سیف اب اللہ رحم. نہیں نہیں, ٹھیک ہے, چلے بس بس, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو عبد جو ہے نا بھائی, ایک کافر جو ہوتا ہے نا وہ بھی عبد ہوتا ہے, ایک مومن وہ بھی عبد ہوتا ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ بھی عبد ہیں, ٹھیک ہے. عبد جو ہے نا, یہاں پر کمال عبد کی میں آپ سے بات نہیں کر رہا, کمال عبد دا بیسٹ عبد, اس کی میں آپ سے سوال نہیں کر رہا. وہ تو پہلے ڈسکشن ہو چکی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبودیت کے کمال پر فائز تھے, ٹھیک ہے. ابھی ہم پوچھ رہے ہیں واٹ از دا ڈیفینیشن آف عبد, یعنی نفس عبد, جو تھوڑی ٹیکنیکل جارگن سمجھتے ہیں عربی زبان کی, نفس عبد اس کی کیا تعریف ہے؟ نفس عبد کی تعریف یہ ہے, روح پلس جسم, روح پلس جسم, سمجھتے ہیں, کلیئر ہے بات. جب جسم اور روح مل جاتے ہیں تب وہ چیز عبد کہلاتی ہے, ठीक है। अब इसमें कमाले अब्द और नाकिस अब्द की बात नहीं हो रही, बल्कि अब्द क्या डेफिनेशन है, जिस्म और रूह, ठीक है। क्या मतलब? मतलब ये है कि जब माँ के पेट में, जब वो यानी एक क्या कहते हैं उसको, फीटस बनता है या व्हाटएवर मेडिकल टर्म्स है, ठीक है, तो वो अब्द नहीं होता। अब्द वो कब बनता है? जब उसके अंदर, यानी वो जो जिस्म होता है ना, सिर्फ फिजिकल बॉडी होती है, जिस तरह से एक फिजिकल चीज, जैसे एक पौधा ग्रो करता है, ठीक है ना। तो पौधा जो ग्रो कर रहा होता है तो वो एक फिजिकल चीज होती है, सेल्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, राइट। तो मल्टीप्लाई होने से जो है वो उसकी साइज बढ़ रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये फिजिकल ग्रोथ हो रही है खाली, अभी इसके अंदर रूह शामिल नहीं हुई है। जब इसके अंदर रूह शामिल हो जाएगी, अब वो बन जाएगा अब्द। इसी को हम, यानी हम आम लैंग्वेज में इसी को इंसान भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजिकल बॉडी है ना, ये फिजिकल बॉडी जो है ये इंसानों में होती है और जिन्नों में होती है, ठीक है। फिजिकल बॉडी जो होती है इंसानों और जिन्नों में होती है, तो अब्द जो होते हैं ना वो सिर्फ इंसान हो सकते हैं, और जिन्नों को भी आप इसमें शामिल कर लें, लेकिन जो अल्लाह की मानकर नहीं चलते, अपनी मान करके चलते हैं या शैतान इबलीस की मान करके चलते हैं, वो नाकिस अब्द होते हैं, बुरे अब्द होते हैं, राइट। और जो मान करके चलते हैं वो अच्छे अब्द हो जाते हैं, और जितना ज्यादा मान करके चलना शुरू हो जाते हैं उतने ज्यादा अच्छे अब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो अब्द का जो लफ्ज है ना, ये सिर्फ सजदा, रुकू, कयाम और तशहुद की हालत से इसका ताल्लुक नहीं है। इसका ताल्लुक जो है ना, एक्चुअली जो है वो काम, यानी पहली तो ये रूह और जिस्म के मजमुए का नाम है। फिर इसके अंदर कमाल कैसे आता है? कमाल जो है वो जितनी कमाल की अदात होगी उतना कमाल की उबूदियत होगी, ठीक है। तो ये बस एक चीज थी कि भाई नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर जो ये मोहताजी वाला इल्जाम लगाते हैं या एतराज करते हैं ना, तो भाई नबी अलैहिस्सलाम सलाम की जो परफेक्शन है वो गैर मोहताजी की वजह से नहीं है, वो तो उनकी उबूदियत के अंदर कमाल है, ठीक है ना। और उबूदियत के अंदर कमाल जो है उसके बारे में हमने कल पहले भी बात कर लिया, तो अब उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा एतराज ये क्या करते थे, जानवरों के पास भी तो फिजिकल बॉडी होती है, जानवरों के पास भी फिजिकल बॉडी होती है, तो जानवर जो है वो भी उसके अंदर भी रूह होती है, ठीक है। तो रूह और फिजिकल बॉडी, आपका बहुत अच्छा सवाल है कि फिर अब्द में जो है वो तो जानवर भी आएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब सिर्फ इतना ही दिया जा सकता है कि जो इंसान और जिन है ना, तो इनके पास भी फिजिकल बॉडी है, इनके पास भी रूह है, ठीक है। और जानवरों के पास भी फिजिकल बॉडी है, जानवरों के पास भी रूह है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है जानवरों में और जिन और इंसानों में, जो माशाल्लाह बाकायदा यानी इल्म के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है ना ये जवाब, ठीक है। फर्क क्या है? फर्क जो है वो सिर्फ और सिर्फ अकल का फर्क है, ज़विल उकूल। योर अकल का भी क्या मतलब होता है कि इख्तियार, इख्तियार, दे कैन चूज बिटवीन द टू पैथ्स, ठीक है, कि वो सही यानी रास्ते को पसंद करें या गलत रास्ते को पसंद करें, ये इख्तियार अल्लाह ताला ने इंसानों जिन्नों को दिया है। इस इख्तियार की वजह से, इख्तियार मिल करके फिर उनको जो है ना वो बंदा बनाता है, ठीक है। यानी खाली रूह भी नहीं, बल्कि रूह के साथ साथ ये इख्तियार जब मिल जाता है तो फिर वो बंदा बन जाते हैं, और बाकी जो है वो यानी जो जो जानवर हैं और जो, जो यानी क्या कहते हैं प्लांट किंगडम की जो चीजें हैं, तो है तो उनके पास भी रूह, उनके पास भी जो है वो, यानी कि बस इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ कि हाउ मच, ठीक है, कि कितनी ज्यादा किसको अल्लाह ताला ने क्या चीज दी हुई है, ठीक है। तो इंसानों और जिन्हों को जो है वो इख्तियार जो है वो कामिल दिया हुआ है, किसी और को जो है वो ये इख्तियार नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो अब्द की तारीफ जो है ना, फिर उलमा ने जो है वो ये लिखी है कि रूह और जिस्म का मजमुआ ये अब्द कहलाता है। तो अब ये अब्द जो है ना ये बनता है माँ के पेट से, ठीक है ना, और ये फिर अब्द ही रहता है, क्योंकि अब जो है ना इसके पास जिस्म भी रहेगा, किसी ना किसी फॉर्म के अंदर इसके पास जिस्म रहेगा, ऑल द वे टिल एवर, फॉर एवर अब इसके पास जिस्म रहेगा, ठीक है। ये जिस्म जो है वो इसके पास दुनिया की जिंदगी में भी रहेगा, ये दुनिया की जिंदगी से चला जाएगा ना, तो फिर जो आलम बरजख में जाएगा, जिसको हम कब्र की जिंदगी कहते हैं, आलम बरजख में भी इसको एक जिस्म अता कर दिया जाएगा, ठीक है ना। वहां पर भी इसके पास जिस्म रहेगा, रूह भी साथ साथ रहेगी, जिस्म भी साथ साथ रहेगा, इख्तियार अब उससे वापस ले लिया जाएगा, अब इसके पास इख्तियार नहीं है, ठीक है। लेकिन जिस्म और रूह उसके पास फिर भी रहेगी। फिर उसके बाद वो आलम आखिरत में जाएगा, वहां पर भी उसके पास जिस्म और रूह होगा, ठीक है, रूह और जिस्म दोनों चीजें होंगी। फिर आलम आखिरत मजीद जो प्रोसीड करके या तो जन्नत में जाएगी या फिर जहन्नुम की तरफ जाएगी, वहां पर भी इसके पास जिस्म भी होगा और उसके पास रूह भी होगी, ठीक है। तो इसकी जो इब्तिदा जो है वो अब्द की इब्तिदा कब हुई, अब्द की इब्तिदा जो है वो माँ के पेट से हुई। आलमुल अरवाह में रूह की इब्तिदा तो हो चुकी थी, अब्द की इब्तिदा नहीं हुई थी। आलमुल अरवाह में जब अल्लाह ताला ने रूहानी तौर पर सारे इंसानों को बना दिया ना, तो वहां पर किसी को जो है वो जिस्म नहीं दिया, जो जिस्म जो है वो दुनिया की जिंदगी में आकर के मिलता है। अगरचे के उलमा ने लिखा है कि वहां पर भी बहुत ही एक मिनिमल अमाउंट ऑफ बॉडी, इवन आलम और अरवाह में भी अल्लाह ताला ने इंसानों को दी हुई थी। बल्कि एक्चुअली मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने इसके ऊपर लिखा है कि इवन आलम और अरवाह में भी जो है ना, क्योंकि वो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि आलम अल अरवाह के बारे में थोड़ी उन्होंने तफसील लिखी थी कि वहां पर भी इनको जो छोटी सी एक बॉडी इंसानों को अल्लाह ताला ने दी हुई थी, तो वो भी उनको अब्द बना देती है या अब्द की तारीफ में शामिल कर देती है वगैरह। लेकिन अभी ध्यान में क्लियर नहीं होगा। अच्छा चलें, फिलहाल हम आगे चलते हैं। अल्लाह ने हर जानदार को अपनी इबादत के लिए बनाया है, लेकिन ये सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं कि वो कैसी इबादत करते हैं। हाँ, इमिन शहीन अल्लाह युसबिहु बिहम्दिही वलाकिन वलाकिन नकुम क्या है, तो हाँ अल्लाह ताला की तो तस्बीह सब बयान करते हैं लेकिन हमें उसका शऊर नहीं है। अच्छा, तो मोहताजी वाली बात हो गई, ठीक है। दूसरी बात जो है, यानी नबी रसूलुल्लाह की परफेक्शन जो है वो अबूरियत की वजह से है, वो दूसरी चीजों में उनकी परफेक्शन देखने की हमें जरूरत ही नहीं है कि भी उनके पास वो उनको खाना खाने खाने की एहतियात क्यों होती है और दूसरी चीजों की मोहताजी क्यों है वगैरह, उस सब देखने की जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा एहतियात, दूसरा एतराज ये लोग क्या करते थे कि इनके पास कोई फरिश्ता क्यों नहीं होता, ठीक है, जो कि लोगों को बताता कि हाँ भाई ये अल्लाह के रसूल हैं और लोगों को जो है वो हुक्म देता कि इनकी बात मानो, ठीक है। तो इसका जवाब क्या है कि भाई अगर ये फरिश्ता होता, जैसे कि इनकी डिमांड थी कि फरिश्ता जो है ना ये कोई बहुत ही कोई ताकतवर किस्म की सुपर बीइंग किस्म की चीज होता जो कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ लगा रहता और ये जो है फिर लोगों को हुक्म देता और लोग जो है वो उससे यानी थरथरा करके और खौफ में आकर के जो है वो इनकी बात को माना करते, तो भाई ये तो मकसूद ही नहीं है। मकसूद सारा का सारा क्या है, अल्लाह ताला ने जो रसूलों को इस दुनिया में भेजा है तो मकसूद क्या है, मकसूद तो ये है ना कि लोग जो है वो ईमान लेकर के आए, राइट, ईमान। और ये ईमान की तारीफ क्या है, ईमान की तारीफ होती है बात को मान लेना बगैर देखे हुए, बगैर दलील के, किसी के ऊपर एतमाद करके बात को मान लेना, राइट। यही बात हुई है ना पिछली क्लासों के अंदर कि ईमान की बुनियाद एतमाद पर होती है, राइट, इस शख्स के ऊपर, राइट, इन शख्स के ऊपर, इनके ऊपर एतमाद करके इनकी सारी बातों को मान लेना, उन बातों को जो कि गैब से ताल्लुक रखती हैं, जो कि तुम खुद जाकर के वेरीफाई नहीं कर सकते, खुद नहीं देख सकते उन बातों को। अगर रूहानी दुनिया का एक फरिश्ता इनके साथ होता जो कि तुम्हें नजर आता, तो फिर जो है गैब किधर रहता फिर, राइट, इनकी बात के ऊपर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के ऊपर एतमाद की कहाँ फिर रेलेवेंस रहती, राइट। फिर तो तुमने देख लिया उसको, रूहानी दुनिया की चीज को देख लिया, ताकतवर किस्म की एक मखलूक को देख लिया, तो अब तो तुम डर के मारे बात मानोगे ना, यानी उस चीज को देख करके अपनी आंखों की बुनियाद पर, राइट। अब तुम किस बुनियाद पर बात मानोगे, अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर बात मानोगे, क्योंकि तुम्हारी आंखें उस फरिश्ते को देख रही हैं, तुम्हारे कान उस फरिश्ते की हैबतनाक आवाज को सुन रहे हैं, तुम्हारी तुम्हारा दिमाग जो है वो कैलकुलेट कर रहा है कि जब इतना बड़ा भारी भरकम किस्म का और मजबूत हैयत रखने वाला जो इनके साथ लगा हुआ है ना, तो इसका मतलब यह है कि वी बेटर फॉलो हिज कमांड्स। अगर नहीं फॉलो करें तो फिर ये फरिश्ता आकर के हमारी पिटाई करेगा, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर ईमान किधर रह गया, ठीक है। तो इस वजह से ना ये फरिश्ता जो है वो आप सरसरम के साथ अगर होता तो फिर तो यानी मकसद रिसालत ही खत्म हो जाता फिर, ठीक है ना। मकसद रिसालत तो ईमान बिलगैब था, और ईमान बिलगैब फिर फरिश्ते के होने के साथ हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये दूसरा एतराज जो है उसका ये जवाब है कि फिर इम्तिहान कहाँ से, अगर फरिश्ते ही भेज देते तो फिर तो इम्तिहान, ये जो दुनिया जो इम्तिहान गाह है आजमाइश के लिए बनाई गई है, सारी की सारी तो सारा का सारा खत्म ही हो जाता ना सिलसिला, ठीक है। अच्छा, तीसरा एतराज चले आप बता दें, तीसरा एतराज क्या करते थे ये लोग? पहला एतराज मोहताजी, खाने पीने और बाजार वाली। दूसरा एतराज इनके साथ फरिश्ता क्यों नहीं होता जो हुक्म दिया करता। तीसरा एतराज क्या था? जी, वाई नॉट रिच, है ना। इनके पास जो है वो यानी औ क्या औ युल्का इलैहि कंजुन, इनके पास खजाना क्यों नहीं है या बाग क्यों नहीं है, ठीक है। खजाना और बाग, यानी खजाना क्या मतलब होता है? सोने और चांदी, जेवरात वगैरह, कॉइन्स वगैरह, राइट, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स वगैरह, जिनसे कि आप अपनी जरूरियात खुद से पूरी कर सकें, ठीक है ना। आपके पास जो है फिर जब खजाना होगा तो फिर आप अपने पास सर्वेंट्स भी रख सकेंगे, बड़े सारे आपके पास गुलाम भी हो जाएंगे और नौकर चौकर भी होंगे, आपको जो काम करवाना होगा तो वो आप उनके जरिए से करवाएंगे, वो बाजार जाकर के चीजें खरीद करके लेकर आएंगे, आपको खुद बाजार नहीं जाना पड़ेगा, राइट। और वो आपके सामने जो है वो खाना पेश करेंगे, आपको खाने का इंतजाम नहीं करना पड़ेगा, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के अंदर मदद किया करते थे अपनी बीवियों की, ठीक है ना। तो आपको ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे अगर आपके पास ये असबाब मौजूद होंगे। दूसरा ये कि जन्नात, जन्नात यानी बागात, राइट, बागात के अंदर जो है वो ये सारी चीजें खुद से उगती हैं, वो आपके अपनी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ऐसा सब कुछ जो है वो इनके पास क्यों नहीं है, ये गरीब क्यों नजर आते हैं, राइट, इनके पास फिजिकल वेल्थ क्यों नहीं है, ठीक है। तो इसका क्या जवाब था कि भाई फिजिकल वेल्थ जो है ना, इसका जवाब एक्चुअली आगे तफसील के साथ आ भी रहा है, ठीक है, जो कि अगली आयात के अंदर है। तो इसको हम थोड़ा बहुत जो है वो आगे तक आगे आयात के लिए डिफर करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात यहाँ पर उससे पहले भी करनी है कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम वाला काम है ना, तो इस काम के अंदर तरीका यही होता है, ठीक है, कि नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो उनके पास माल और दौलत जो है वो पहले होता था, ये नहीं है कि कभी भी नहीं होता था, ठीक है। जब वो अपने चचा के साथ रहते थे ना, तो चचा जो थे वो बहुत गरीब थे, वो कोई अमीर नहीं थे, और उनकी बहुत सारी औलाद थी, राइट। कितने सारे चचा नबी अलैहिस्सलाम के, राइट, अबू लहब भी चचा ही तो था ना, राइट, हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चचा थे, ठीक है, हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चचा थे, और भी कितने सारे चचा थे, ठीक है। तो ये इतने बड़ा एक घराना था, इस घराने को फीड करने के लिए हजरत ये अबू तालिब के पास जो है वो बहुत ज्यादा माल दौलत ही होता था, तो यानी कस्म परसी के साथ जो है वो ये जवानी गुजरी थी। लेकिन जब आप सल्लम की शादी हो गई थी हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के साथ, तो खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तो जो बहुत ज्यादा मालदार खातून थी, ठीक है, और उन्होंने अपना सारा का सारा माल जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के हवाले कर दिया था, आप जैसे चाहें इसको खर्च करें, ये आपकी सवाबदीद के ऊपर है, ठीक है। तो अब एकदम से नबी अलैहिस्सलाम जो है वो बहुत ज्यादा वेल्दी हो गए, क्योंकि खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की सारी वेल्थ जो है वो नबी सल्लम के पास आ गई, ठीक है। लेकिन ये वेल्थ भी जो है वो आप सल्लम के पास ज्यादा से नहीं रही, बल्कि इसको भी जो है वो खर्च कर दिया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो शेब अबी तालिब के अंदर जो लॉकडाउन हुआ था, उस जमाने का लॉकडाउन, राइट, कामिल लॉकडाउन, 3 साल तक कुछ भी नहीं होता था खाने पीने के लिए, पत्ते खाते थे और बाहर से लोग जो है वो थोड़ा बहुत आकर के दे दिया करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ना आप सरम का जो पहले जो 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 रिचेस थी आप सरम के पास, कारोबार भी करते थे, जो ट्रेडिंग वगैरह करते थे, और फिर बीवी की तरफ से भी इतनी सारी दौलत मिल गई थी, तो ये सारी सब चीजें तो थी नबी अलैहिस्सलाम के पास। लेकिन जब आप सरम जो है वो नबी बनाए गए थे ना, तो नबी बनाने के बाद जो है ना ये चीजें जो हैं वो चेंज हो गई थी। ठीक है, अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो ट्रेडिंग वगैरह नहीं किया करते थे। ठीक है, अब पीछे की या तो वेल्थ चल रही थी, ठीक है, पीछे की वेल्थ कुछ अरसा तक मक्का मुकरमा की जिंदगी में चलती रही, ठीक है, या ये कि नबी अलैहिस्सलाम को जो है वो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोग होते थे वो असिस्ट किया करते थे। ठीक है, वो आप सल्लम को ला करके चीजें दिया करते थे, उस तरीके से कारोबार चलता रहता था, और यही सिलसिला जो है वो मदीना मुनव्वरा के अंदर भी इसी तरीके से सिलसिला चलता रहा। ठीक है, आप सल्लम ने उसके बाद कोई कारोबार नहीं किया, आप सल्लम ने उसके बाद किसी की जो है वो नौकरी नहीं करी। ठीक है, तो सिलसिला जो है ना जो यानी इस काम के ऊपर जो जो लगता है ना, तो उसकी जिम्मेदारी फिर अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुआशरे के ऊपर डाली होती है। ठीक है, जो साथ रहने वाले लोग होते हैं फिर वो उनके मुआश की जिम्मेदारी पूरी करते हैं। ठीक है, बाकी जो यानी जो जो असबाब वाला सिस्टम होता है ना कि जी आप कमाएंगे, आप दफ्तर जाएंगे, आप दुकान चलाएंगे, ये वाला सिस्टम जो है फिर उस वक्त उस पोजीशन पे पहुंचने के बाद ये वाला सिस्टम मौकूफ हो जाता है। ठीक है ना, अल्लाह ताला ने ये एक सिस्टम रखा है नबी अलैहिस्सलाम की उम्र के अंदर। ठीक है, अब इसकी तफसील जो है वो हम आगे भी पढ़ेंगे, तो आगे की हम आयात पढ़ना शुरू करते हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, तबारक अल्लज़ी इंशा जअल लका खैरम मिन ज़ालिका जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व यजअल लका कुसूरा। ठीक है, कि बड़ी बरकत वाली है तबारक का, अगेन वही जैसे जिससे कि ये सूरत शुरू हुई थी कि बड़ी बरकत है, अल्लज़ी वो जिसकी इंशा जअला, अगर वो चाहता या अगर वो चाहे, जाला लका खैरन, तो बना दे आपके लिए खैर। ठीक है, खैर का मतलब यहां पर क्या है, माल और दौलत। ठीक है, मिन जालिका जन्नातिन तजरी मिन तहती अल अनहार, यानी जो ये लोग कहते हैं ना कि भाई आपके पास ऐसा सब कुछ क्यों नहीं है, तो इससे भी ज्यादा बेहतर दौलत वो आपके लिए बना दे, ऐसी जन्नात, ऐसे बागात जिनके नीचे नहरें बहती हों। ठीक है, यानी ये लोग जिन जन्नात की बात कर रहे हैं ना कि इनके पास बागात क्यों नहीं है, तो ये तो दुनिया वाले बागात की बात कर रहे हैं ना कि इनके पास जो है वो खजूर के बाग क्यों नहीं होते, इनके पास जो है वो फलाने इस किस्म के खेत वगैरह क्यों नहीं होते। तो भाई अगर अल्लाह ताला चाहता, जो बड़ी बरकत वाली जात है, तो इनके लिए तो ऐसे बागात बना देता कि जिनके नीचे नहरें भी साथ साथ बह रही होती, और ये वयजअल लका कुसूरा, और बना देता आपके लिए कुसूर। कसूर का मतलब यहां पर क्या है, कसर की जमा है, ये कसर कहते हैं, कसर बल्कि कसर नहीं, कसर महल को, पैलेस को, तो वो बना देता आपके लिए पैलेसेस, राइट, बड़े बड़े जो है वो यानी जिस तरह बादशाहों के पैलेसेस हुआ करते हैं, उस तरह के पैलेसेस बना देता आपके लिए। बल्कज़बू बिस्साती, बल्कि ये जो लोग हैं ना काफिर, ये तो छुटलाते हैं कयामत के दिन को। अब यहां से क्या चीज शुरू हो रही है, यहां से कयामत का तस्करा, आखिरत का तस्करा शुरू हो रहा है। ठीक है, वह आतना लेमन कज़्ज़बा बिस्साअति सग़ीरा, और हमने तैयार कर रखी है लेमन कज़्ज़बा उसके लिए जो कि झुठलाता है, बिस्साअति कयामत के वक्त को, सग़ीरन जहन्नुम का एक नाम है ये, सग़ीर, ठीक है, आग, जहन्नुम की आग। ठीक है, तो अब यहां पर देखें क्या चीज हो रही है। सबसे पहले अल्लाह ताला ने अपनी इंट्रोडक्शन करवाई थी, अपने बंदे की इंट्रोडक्शन करवाई थी, अपने कुरान की इंट्रोडक्शन करवाई थी, राइट, और उन लोगों की इंट्रोडक्शन करवाई थी कि जो लोग नहीं मानते, ये पहली तीन तीन आयात थी। ठीक है, फिर उसके बाद 4 से लेकर के 9 आयात तक अल्लाह ताला ने इनके एतराजात का जिक्र किया था। ठीक है, कि ये नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर, की जात के ऊपर ये एतराजात करते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमने आपको क्या बात समझाई थी कि नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर एतमाद, ठीक है ना, ये एतमाद है कि जिसकी यानी जिसकी डिमांड की जाती है, जो एक्सपेक्ट किया जाता है इंसानों से कि इनके ऊपर तुम एतमाद करो, जिस तरह तुम इनकी सारी दूसरी बातों के ऊपर एतमाद करते थे, राइट, दुनियावी मामला के तुम इनके ऊपर एतमाद करते थे, अपनी अमानतें इनके पास रखवाते थे, इनकी बात को जो है वो सच समझते थे, इनको अपने दरमियान सबसे ज्यादा जो है वो यानी शरीफ और दयानतदार समझते थे, बिल्कुल इसी तरीके से इनकी बाकी बातों के ऊपर भी एतमाद करो। ठीक है, तो एतमाद की बात हुई कि भाई इनके ऊपर तुम एतराजात ना करो बल्कि इनके ऊपर तुम एतमाद करो। ठीक है, और अब एतमाद के ऊपर क्या चीज बनती है, एतमाद की बिल्कुल बेस प्लिंथ राइट, उसके ऊपर क्या चीज बनती है, उसके ऊपर ईमान बनता है राइट। एतमाद की बेस के ऊपर ईमान की फाउंडेशंस बढ़ती हैं। ईमान क्या चीज है, गैब की बातों पर यकीन करना, किस बुनियाद पर, क्योंकि ये कह रहे हैं राइट, क्योंकि ये कह रहे हैं। तो अब ये गैब की बातें क्या हैं, ये गैब की बातें फिर आखिरत की जिंदगी से मुताल्लिक है, आखिरत की जिंदगी को किसी ने नहीं देखा राइट, कोई जाकर के जहन्नुम को देख करके नहीं आया, कोई जाकर के जन्नत को देख करके नहीं आया। ठीक है ना, तो सारी तफसीलात किसने बताई इस जन्नत और जहन्नुम के बारे में, नबी अलैहि सलाम ने बताई ना। तो अब जो ये आयात आ रही हैं, इन आयात के अंदर उस जहन्नुम की तफसीलात बताई जा रही है कि जिनको के ये जो एतराज करने वाले लोग हैं, ना मानने वाले लोग हैं, इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या चीज तैयार करके रखी हुई है। तो अल्लाह ताला फिर यहाँ से उसका तस्करा शुरू कर रहे हैं कि हमने तैयार करके रखी है उन लोगों के लिए जो कि क़यामत के दिन का इनकार करते हैं, आग सईरा, इज़ा रअतहुम मिन मकानिन बईदिन, कि जब वो देखेगी इन लोगों को, ठीक है, यानी वो जहन्नुम की आग गोया कि एक देखने वाली चीज भी होगी जो कि इन लोगों को देखेगी। ठीक है, जब वो इन लोगों को देखेगी, मिन मकानिन बईदिन, दूर की जगह से, यानी अभी ये लोग दूर होंगे उस जहन्नुम से और जहन्नुम जो है ना वो उनको दूर से देख रही होगी, तो क्या हो रहा होगा, समिउ लहा, ये लोग सुनेंगे उस जहन्नुम की आवाज को, जहन्नुम के अंदर से आवाजें आ रही होंगी और ये लोग बहुत दूर से, अभी जहन्नुम के करीब ही पहुंचे, बहुत दूर है जहन्नुम से, ये लोग उस आवाज को सुनेंगे जहन्नुम की, और वो आवाज कैसी होगी जहन्नुम की, तगयुज़ व ज़फीरा, जहन्नुम गुस्से में होगी, तगयुज़ गैज़ राइट, गजब गुस्सा, झुंझुलाना, फ्रस्ट्रेटेड होगी जहन्नुम, है ना। सूरह काफ के अंदर क्या जिक्र आता है जहन्नुम का, कि जहन्नुम कहेगी अल्लाह ताला से कि हल हल मिन मजीद, और यानी जहन्नुम के अंदर लोगों को डाला जा रहा होगा और जहन्नुम का पेट नहीं भरेगा। जहन्नुम जो है वो गोया के एक लिविंग बीइंग की तरीके से अल्लाह ताला से मांगेगी, और ए अल्लाह, और मेरा पेट अभी तक नहीं भरा, मुझे और लोग चाहिए, और जहन्नुमी लोग चाहिए। ठीक है, तो जहन्नुम जो है वो बहुत गुस्से में होगी, और गुस्से में जो जो होता है तो फिर इंसान भी गुस्से में हो ना, तो फिर जरा सी आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं, कानों से जो है वो जैसे भाप निकलनी शुरू हो जाती है, और कार्टूनों के अंदर दिखाया जाता है कि जैसे कि कानों के अंदर से धुआं निकल रहा है और अजीब गरीब किस्म की शक्ल हुई हुई है। ठीक है, तो जहन्नुम की भी जो है ना वो इस तरीके से गैज की वजह से, गजब की वजह से जो है वो फ्रस्ट्रेशन की वजह से कि भाई अभी तक मेरा पेट क्यों नहीं भरा इन लोगों से राइट, उसकी आवाजें निकल रही होंगी। जफीरा, और वो चिल्ला रही होगी, जफीर चिल्लाना, तो ये लोग दूर होंगे लेकिन दूर से इनको जहन्नुम की ये आवाजें सुनाई दे रही होंगी। और वइज़ा उल्कु मिन्हा, और जब वो डाले जाएंगे उसके अंदर, ठीक है, अभी तो ये बहुत दूर थे, पिछली आयत में जब जिक्र है जिसका जिक्र है दूरी का जिक्र है, लेकिन अब जो है ना फिर अगला स्टेप, अगली स्टेज आ गई है जहन्नुम के अंदर फेंके जाने वाली स्टेज। तो फरमा रहे हैं इज़ा उल्कु मिन्हा, जब ये डाले जाएंगे उसके अंदर, मकानन वयकन, तो अगरचे के जहन्नुम बहुत बड़ी होगी, जहन्नुम के अंदर जमीन और आसमान को सिमो देने के बराबर कैपेसिटी है, कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है जहन्नुम के अंदर, लेकिन एक एक जहन्नुमी को इंडिविजुअली बड़ा मकान नहीं मिलेगा बल्कि बहुत तंग जगह मिलेगी, मकानन वयकन, तंग जगह मिलेगी, बहुत तंग कोठरी जिसको कहते हैं ना, जिस कोठरी के अंदर जो है वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकेगा, सही से बैठ भी नहीं सकेगा, जिस तरह से किसी को स्टफ कर दिया जाता है अंदर, बहुत ही जैसे आप किसी बड़ी चीज को, आपके पास अगर कोई जरा फ्लेक्सिबल किस्म की चीज हो, ठीक है, और उसको आप किसी कार्टन के अंदर घुसेड़ना चाह रहे हो, तो कार्टन के अंदर कैसे घुसेड़ते हैं, स्टफ करके घुसेड़ते हैं ना ऐसी चीज को, जो कि जरा सॉफ्ट बॉडी वाली चीजें होती हैं, हार्ड बॉडी वाली चीज को तो आप स्टफ नहीं कर सकते। तो ये जहन्नुमी को स्टफ किया जाएगा उस कोठरी के अंदर, जो बहुत ही तंग होगी, इसके फिजिकल साइज के बराबर भी नहीं होगी। मकानन वयकन मुकर्रनीना, और उसके अंदर भी जो है इसको जंजीर में बंधे हुए होंगे ये लोग, एक जंजीर में कई कई बंधे हुए होंगे। ठीक है, अब ये बंधे हुए होंगे या ये तो कोठरी के अंदर जाने से पहले का जिक्र है, ठीक है, कि भाई उनको जो ड्राइव किया जा रहा होगा उस कोठरी की तरफ, तो जंजीरों के अंदर बांध करके इन सबको जो है वो एक साथ ड्राइव किया जा रहा होगा, और फिर उसके बाद अलग अलग कोठरी के अंदर बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसका पूरा अहवाल बयान किया कि मुकर्रनीन, ये लोग एक जंजीर में कई कई बंधे हुए होंगे, और दाऊ, ये पुकार रहे होंगे हुनालिका सुबूरा, उस जगह पर ये लोग मौत पुकार रहे होंगे। सुबूर कहते हैं मौत को, ठीक है, कि काश के वहां पे जाने से पहले हम मर जाएं, राइट, हम मर जाएं, हमें वहां पर पहुंचना ना पड़े। और ये मौत को ये लोग क्यों पुकार रहे होंगे, क्योंकि इन्होंने मुशाहिदा किया होगा इससे पहले कि जानवरों का अल्लाह ताला हिसाब करेंगे कयामत के दिन। और कैसे हिसाब करेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक सींग वाली बकरी, जिसने एक बगैर सींग वाली बकरी को सींग मारी थी इस दुनिया के अंदर, राइट, जुल्म किया था, सींग मारी थी, उसके साथ उसको तकलीफ पहुंचाई थी, तो अल्लाह ताला कयामत के दिन उन दोनों बकरियों को जमा करेंगे, उनमें से जो सींग वाली थी उसके सींग ले लिए जाएंगे, और जो बगैर सींग वाली थी उसको सींग दे दिए जाएंगे, और उससे कहा जाएगा कि अब तुम इसको सींग मारो। तो वो सींग वाली बकरी फिर अब जो है ना वो उस दूसरी बकरी को सींग मारेगी, और फिर इन दोनों का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद इन दोनों को डस्ट बना दिया जाएगा, गर्द गुबार जैसा बना दिया जाएगा, यानी इनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये जो मंजर होगा ये काफिर देख रहे होंगे, तो जब ये लोग उसको देखेंगे ना तो ये क्या कहेंगे कि काश के हमें भी मिट्टी बना दिया जाता, ठीक है, हमें भी मिट्टी बना दिया जाता, हम भी खत्म हो जाते, हमें भी मौत आ जाती, हमें जहन्नुम में ना जाना पड़ता। क्योंकि उस वक्त उन लोगों को अंदाजा हो चुका होगा, कंफर्म हो चुका होगा कि उनको जहन्नुम में फेंका जाने वाला है। ठीक है, तो वो खौफ के मारे जो है ना उसी वक्त से मौत को याद करना शुरू कर, मौत को यानी मांगना शुरू कर देंगे, और जब उनको खींच करके ले जाया जा रहा होगा जहन्नुम में, तो फिर तो वो चिल्लाना शुरू कर देंगे, सुबूरा सुबूरा, ठीक है, मौत मौत। तो उसके ऊपर क्या कहा जाएगा उनसे, ला तदउल यौम, मत पुकारो आज के दिन सुबूरन वाहिदन, एक मौत को मत पुकारो, वदउ सुबूरन कसीरा, बल्कि बहुत सारी मौतों को पुकारो, इसलिए कि तुम्हें अभी मौतें मिलने वाली हैं, एक दफा मरोगे जहन्नुम के अंदर अजाब खा करके, फिर तुम्हारा दोबारा जिंदा किए जाओगे, फिर मारे जाओगे, फिर दोबारा जिंदा किए जाओगे, फिर मारे जाओगे। तो अल्लाह ताला कहते हैं ला तदउल यौमा, नहीं पुकारो तुम आज के दिन सुबूरन वाहिदन, एक मौत को, बल्कि कसीर मौतों को तुम पुकारो। कुल, कह दीजिए, अज़ालिका खैर, क्या ये बेहतर है कि अम जन्नतुल खुल्द, या जन्नतुल खुल्द, हमेशा हमेशा रहने वाली जन्नत। खुल्द कहते हैं हमेशा, हमेशगी, ठीक है, जो कभी भी फिना ना होती हो उसको खुल्द कहते हैं। खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा हमेशा रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, तो अब ये जहन्नुम के थोड़े से अहवाल बयान करने के बाद, यानी दो तीन आयतों के अंदर, फिर अल्लाह ताला हमारी अकल को झंझोड़ रहे हैं। कह दीजिए इन लोगों से कि क्या ये बेहतर है जो जहन्नुम में जाने वालों का अंजाम होगा, हम जन्नतुल खुल्द, या हमेशा रहने वाली जन्नत, हमेशा रहने वाले बागात, अल्लती वुअदल मुत्तकून, के जिनका वादा किया जाता है उन लोगों से जो के तकवा वाली जिंदगी गुजारते हैं, उनसे वादा किया गया है। कानत लहुम जज़ाउ व मसीरा, वो होगा उनका बदला और फिर, यानी फिर जाने की जगह, मसीर मतलब लौट के जाने वाली जगह, यानी यानी इवेंचुअली दे विल लैंड ओवर देयर, ठीक है, इन जन्नत। लहुम फीहा मा यशाउना खालिदीन, उनके लिए उसके अंदर यानी जन्नत के अंदर है जो वो चाहेंगे, हमेशा हमेशा खालिदीन, जो हमारी ख्वाहिशात है ना, मा यशाउना, जो वो चाहते हैं जन्नत के अंदर सारी ख्वाहिशात वहां पूरी हो जाएंगी। कान अला रब्बिका वअदम मसूला, ये अल्लाह ताला ने वादा किया है, ये अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया है। अला रब्बिका, अला का मतलब होता है किसी के जिम्मेदार, जिम्मे डाल देना कोई चीज, ठीक है। तो रब ने ना अपने जिम्मे इस बात को लिया हुआ है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाई हुई है, और ये एक वादम मसूला है कि ये एक वादा है मसूला, जो कि मांगा मिलता। इसकी तशरीह हम आगे इंशाल्लाह पढ़ने लेंगे, मसूला क्यों कहा, खुलासे तफसीर भी तो पढ़नी है ना। वयौमा यहशुरुहुम वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाही, और जिस दिन ये सब के सब जमा किए जाएंगे, हशरा यहशुरु का मतलब होता है जमा जमा करना, जैसे मैदान हशर के अंदर सब के सब जमा किए जाएंगे, तो उसको इसलिए उसको मैदान हशर कहते हैं। तो और जिस दिन वो जमा करेगा उन सबको, वमा यअबुदून मिन दूनिल्लाही, और जिनको वो पूछते थे अल्लाह के अलावा, ठीक है ना। दूनिल्ला, दून कहते हैं अदद है, ठीक है। एक खवातीन को पता होगा, एक अबाया की दुकान है ना, क्या नाम है उसका, बेदून इसम, राइट। उसका नाम बड़ा अजीब है, हमारे एक दोस्त अमरीका शायद कहने लगे ये अजीब नाम रखा है उन्होंने अबाया की दुकान का, बेदून इसम, यानी इस शॉप विदाउट ए नेम, यानी उस शॉप का कोई नाम नहीं है, वो बेदून इसम है, नाम के अलावा है वो, ठीक है। तो मिन दून इल्लाही, अल्लाह के अलावा जिसको ये लोग पूछते थे ना, जिन चीजों को भी ये पूछते थे, उनको भी जमा किया जाएगा। यहशुरुहुम यानी इन काफिरों को भी जमा किया जाएगा, और जिनको ये अल्लाह के अलावा पूछते थे उनको भी जमा किया जाएगा। फयकूलू, फिर उनसे कहा जाएगा या उनसे कहेगा, कहा जाएगा नहीं, उनसे कहेगा, अअंतुम अदललतुम इबादी, क्या तुमने गुमराह किया है मेरे बंदों को, ठीक है, मेरे इन बंदों को। हा उदाई मिन यानी इबादी, हा उलाई अमहुम दुल्लु सबीला, या वो आप बहके रास्ते से, यानी वो खुद ही रास्ते से गुमराह हो गए, या तुमने इन बंदों को गुमराह किया था, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है इसके ऊपर आप में से कोई सवाल कर सकता है, ठीक है, आपको हक पहुंचता है सवाल करने का, कि भाई यहां पर तो काफिरों का जिक्र किया जा रहा है जो गुमराह हो गए थे रास्ते से, राइट, और यहाँ पर उनके लिए अल्लाह ताला क्या लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इबादी मेरे बंदे, है ना। और आपने तो बताया था कि जी जो ना मानने वाले लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको इबादी नहीं कहते, ठीक है। तो मजे की बात, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसका क्लियर जवाब तो मेरे पास नहीं है, ठीक है, क्योंकि सवाल भी मेरे जहन में पहली दफा खुद ही आया है, सही है। लेकिन इसका जवाब के तौर पे, इसके जवाब के तौर पे आप ये कह सकते हैं कि ये जो इबादी वाली एक्सप्लेनेशन दी थी ना, ये मैंने अपनी तरफ से पहली बार दी नहीं थी, ठीक है, ये यानी अकाबरीन की तरफ से दी हुई एक्सप्लेनेशन ही आपको फॉरवर्ड करी थी कि अल्लाह ताला मानने वाले बंदों के लिए इबादी का लफ्ज इस्तेमाल फरमाते हैं, ठीक है ना, और जो ना मानने वाले बंदे होते हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इबादलना का लफ्ज इस्तेमाल किया, बीच में नाम को लेकर के आ गए, ठीक है। तो उनको इबादना नहीं कहा, इबादुना नहीं कहा, इबादिना नहीं कहा, बल्कि उनको इबादलना कहा, ठीक है। तो अब यहां पर इन लोगों को इबादी क्यों कह रहे हैं, तो उसकी एक इहतमाली एक्सप्लेनेशन ये जहन में आती है कि वो जो दिन होगा ना, तो उस दिन जो है अल्लाह ताला काफिरों को माफ तो नहीं करेंगे, ठीक है, ये तो नहीं होगा कि जिन्होंने शिर्क किया है तो उनको जो है वो अल्लाह ताला उधर माफ कर दें और जन्नत में डाल दें, ठीक है। ये बात भी कुरान से कंफर्म है कि मुशरिकीन को अल्लाह ताला माफ नहीं करेंगे, ठीक है, काफिर जो है ना वो जन्नत में नहीं जाएंगे, उनके गुनाहों को उस वक्त माफ नहीं किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा मुमकिन है कि ओवरऑल तो कयामत के दिन अल्लाह ताला की रहमत जो है ना वो तो बहुत ज्यादा होगी, जैसे कि हदीस मुबारक से पता चलता है कि दुनिया के अंदर अल्लाह ताला की रहमत का सिर्फ 1% جس کی وجہ سے ساری محبت اور الفت آپ کو دنیا میں نظر آتی ہے. اور 99% جیسے کہ آپ نے بھی لکھا 99% جو ہے وہ تو قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سیف کر کے رکھی ہوئی ہے. تو قیامت کے دن جو 99% رحمت ہوگی شاید اس 99% رحمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے لیے بھی عبادی کا لفظ استعمال فرما دے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ معافی والی بات یہاں نہیں ہو رہی, کہ وہ بھی تو قرآن کے اندر ہی ہے نا کہ جی اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں کہہ رہے کہ اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہو جائیں گے کہ جی کافروں کو بھی معاف کر دیں گے اور جو ہے وہ ان کا شرک کے باوجود ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, لیکن اس رحمت کا ایک یعنی پرتو جو ہے نا وہ یہ شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے نا جب ان بتوں سے خطاب کریں گے اور بتوں کے اندر بھی پھر اس وقت لائف آ جائے گی, اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے کسی کو لائف دے سکتے ہیں, تو بتوں سے خطاب کر کے پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی گمراہ ہوئے تھے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا کہیں گے جواب میں, یہ جتنے بھی فالس گاڈز تھے چاہے بت کی شکل میں تھے چاہے جس بھی شکل میں تھے, تو وہ کہیں گے قالو سبحانکا, پاک ہیں آپ, آپ کے اندر تو شرک کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا, غلطی کا کوئی احتمال ہی نہیں ہو سکتا آپ کی ذات کے ساتھ. سبحانکا, تو پہلے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں گے, یہ بت پہلے تسبیح بیان کریں گے, سبحانکا ما کان ینبغی لنا, ہمیں ہمارے لیے تو یہ بنی نہیں پڑتا تھا, ہمارے لیے تو یہ بات مناسب ہی نہیں تھی. ما ینبغی, جیسے اللہ تعالیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہے نا سورہ یاسین کے اندر کہ ہم نے آپ کو کیا ہے شعر کا علم نہیں دیا اور یہ آپ کی مناسب بھی نہیں تھا, تو وہاں پر بھی یہ ینبغی کا لفظ آتا ہے. ٹھیک ہے, کہ شعر و شاعری آپ کے مناسب حال ہی نہیں تھی, تو اسی طرح کا لفظ جو ہے ینبغی کا لفظ جو ہے یہ لوگ جو ہے وہاں پر یعنی بت کہیں گے کہ ہمارے لیے تو یہ بات مناسب ہی نہیں تھی کہ ہم جو ہے نا وہ پکڑ لیں کسی کو تیرے بغیر رفیق, ان نتخذ من دونک من اولیاء. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ جو بت ہے نا یہ بت بھی یہ یعنی یہ لیونگ بینگز تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے, یہ تو نان لیونگ بینگز ہیں, تو ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہی نہیں ہے, ان کے پاس تو اتنی کامل عقل ہے ہی نہیں کہ یہ توحید اور شرک میں کے درمیان کوئی چیز اختیار کر لیں, یہ تو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں نا, یہ تو صرف جو ہے وہ توحید ہی کو فالو کر سکتے ہیں, نان لیونگ تھنگس رائٹ, یا جانور اور پلانٹ کنگڈم سے جو بھی چیزیں بلانگ کرتی ہیں تو وہ تو یعنی کفر کر ہی نہیں سکتی ہے نا, تو ان کے لیے تو یہ بات ممکن ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کو شریک ٹھہرائیں. تو انہوں نے کیا جواب دیا, وکانا ما کانا یم بغی لنا ان نتخذا, کہ ہم پکڑ لیں من دونے کا آپ کے علاوہ من اولیاء کسی اور کو اپنا دوست, ولیکن اور لیکن متعتہم ان کو فائدہ پہنچاتا رہا, ان کافروں کو فائدہ پہنچاتا رہا, وآباؤہم اور ان کے باپوں کو باپ داداؤں کو, حتی نسو ذکر, ٹھیک ہے کہ حتیٰ کہ یہ بھلا بیٹھے تیری یاد. اب یہ تھوڑا سا ذرا کمپلیکیٹڈ ہو رہا ہے, اس کو انشاءاللہ خلاصہ تفسیر کے اندر باقی تفصیل سے بھی ڈسکس کریں گے. وکانو قوما بورا, اور یہ لوگ تباہ ہونے والی قوم تھے, بورا کا مطلب تباہ ہونے والی, اور قوم یعنی یہ جو کافر تھے نا جنہوں نے کہ ہمیں معبود بنا لیا تیرے ساتھ, ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ تباہ اور برباد ہونے والی قوم تھے. تو نے جو ان کو نعمتوں میں رکھا ہوا تھا نا, تو انہوں نے ان نعمتوں کے اوپر تیرا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا اور اس وجہ سے یہ برباد ہو گئے, یعنی جو فالس گاڈز تھے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے. ٹھیک ہے, یہاں پہ کسی نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں تو ان کو پڑھ لیتے ہیں کہ could word عبادی represent that question is not biased that is without blaming the astray. Without blaming the astray, لوگ question is not biased. نہیں, بلیم تو پڑے گا نا لوگوں کے اوپر. ٹھیک ہے, یعنی اصل میں تو بات وہی ہے نا کہ جی بتوں نے گمراہ نہیں کیا نا کسی کو بھی, بلکہ یہ خود ہی گمراہ ہوئے نا, تو پروف کرنا تو بیسیکلی یہی ہے ایونچولی کہ یہ جو بھی گمراہ ہوا وہ اپنی ہی مرضی سے گمراہ ہوا, کسی نے کسی کو گمراہ نہیں کیا اصل میں. ٹھیک ہے نا, یعنی کافروں کی بات ہو رہی ہے کہ کافروں کو جو ہے نا وہ بلیم انہی کے اوپر ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جو پوائنٹ ہے یہ مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. Can this ayah refer to the people who are worshipping prophets and awliya and salihin? Jisko bhi unhone Allah Ta'ala ke saath sharik bana karke worship kiya, to theek hai, yani jo ke aqeedah ke shirk mein mubtala ho gaye, amli shirk ki baat nahi ho rahi, aqeedah ke shirk mein jo log mubtala ho gaye to wo sare ke sare kafir hote hain. ठीक है, अकीदे का शिर्क जो होता है वो फिर एक हाई लेवल ऑफ शिर्क होता है. अमली शिर्क तो बहुत सारे मुसलमान भी कर बैठते हैं, बल्कि हम भी अच्छा खासा कर बैठते हैं जो कि बड़े दीनदार बने फिरते हैं. तो हम भी जो है वो अमली तौर पर जो है वो अल्लाह ताला के साथ बहुत सारी चीज़ों को शरीक कर लेते हैं, और किसी चीज़ को ना भी करें अपने नफ्स को तो करते ही है ना, राइट. तो अगर शिर्क को देखा जाए तो फिर तो बहुत ही कम लोग हैं जो कि शिर्क नहीं करते हैं. ठीक है, लेकिन जो अमली शिर्क है, इस अमली शिर्क से जो है ना वो कोई काफिर नहीं हो जाता, वरना तो हम सारे ही गए थे ना, फिर सारे काफिर हैं फिर तो हम. ठीक है, तो अमली शिर्क की वजह से काफिर नहीं होता, अकीदे के शिर्क की वजह से काफिर होता है. तो यहाँ पर जिन लोगों की बात हो रही है ना, ये अकीदतन अकीदे के एतबार से जो काफिर है. ठीक है, अच्छा, क्या ये कहा जा सकता है कि उस वक्त जब ये काफिर जहन्नुम खुद देख लेंगे तो इवेंचुअली मान ही जाएंगे अल्लाह की वहदानियत को, तो इसलिए इबादी का वर्ड यूज हुआ क्योंकि अब तो वो मान ही गए, ऑल्दो के इनको माफी नहीं मिलेगी. पता नहीं, जैसे आपको मैंने पहले कह दिया कि भी इससे जवाब मुझे खुद नहीं पता, तो एक एहतमाली दर्जे में खाली बात करी थी कि अल्लाह ताला सिर्फ अपने बात का एक लहजा ही तब्दील कर रहे हैं ना, बाकी तो उनको माफी तो नहीं मिल रही है, तो उस लहजे की तब्दीली की वजह ये हो सकती है. अल्लाह वालों के सवाब, बाकी ये कि हमारे अकाबरी ने इसको इसको एड्रेस किया होगा, माशाल्लाह कई सौ तफासीर की किताबें मौजूद हैं, हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा. सच्ची बात यह है हमें नहीं पता उलमा ने इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे एड्रेस किया है. ठीक है, तो अपनी जहालत को तस्लीम भी तो कर लेना चाहिए ना. अच्छा, आगे फरमाते हैं कि मकान कौम बुरा फ़कद कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलूना. और ये भी खाली मैंने यहाँ पे इसीलिए जिक्र कर दिया था क्योंकि इबादी के कॉन्सेप्ट के ऊपर आपसे तफसीली डिस्कशन करी थी बेस्ड ऑन समथिंग आई हैड स्टडीड बिफोर. ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे किसी के जहन में कोई इल्मी सवाल आ सकता था तो उसको इस नीयत के साथ एड्रेस किया था, खाली हतमी फैसला करने के लिए बिल्कुल भी नहीं डिस्कस किया था. अच्छा, फ़कत कज़्ज़बूकुम बिमा तक़ूलून के तहकीक के वो लोग झुठला चुके तुमको तुम्हारी बात में. फमा तस्तती'ऊना सरफ़ों वला नसरा, अब ना तुम लौटा सकते हो और ना मदद कर सकते हो. ठीक है ना, यानी ये जो काफिरों ने जो बात करी थी ना, तो उनके जो झूठे खुदा थे उन झूठे खुदाओं ने ही इन काफिरों की बात को झुठला दिया. अब उन काफिरों से कहा जा रहा है कि अब तुम्हारे पास इस्तेदात ही नहीं है सरफन किसी चीज़ को चेंज करने की. सरफ कहते हैं ना चेंज को. ठीक है, तो चेंज करने की भी तुम्हारे अंदर इस्तेदात नहीं है. वला नसरा, और ना जो है ना मदद कर सकते हो. वमन यज़लिम मिनकुम नुज़िक़हु अज़ाबन कबीरा, और जो कोई तुम में गुनहगार है, यानी जिसने भी तुम में से जुल्म किया है, नुज़िक़हु हम चखाएंगे उसको एक बड़ा अजाब. वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीना. ठीक है, यहाँ तक जो है वो आखिरत का जिक्र किया और इन ना मानने वालों को जिन्होंने एतराज़ किया था नबी अलैहिस्सलाम सलाम की ज़ात के ऊपर या नबी अलैहिस्सलाम सलाम के लाए हुए पैगाम के ऊपर, पहला एतराज़ और दूसरा एतराज़, तो उन लोगों को फिर जहन्नुम की जो है ना वो तफसीलात बता करके बस उनको जहन्नुम से डराया जा रहा है कि शायद इनमें से कोई डर करके बात मानने वालों में शामिल हो जाए. और उसके बाद फिर अब नबी अलैहिस्सलाम सलाम के ऊपर जिन्होंने एक और एतराज़ किया था कि ये जो खाना पीना के मोहताज हैं, तो इसका जवाब दिया जा रहा है वमा अरसलना क़ब्लका मिनल मुरसलीन, और हमने तो आपसे पहले भी जितने भी मुरसलीन भेजे ना, जितने भी, यहाँ पर मुरसलीन का मतलब वही रसूल. ठीक है, क्योंकि लफ्ज रसूल जो है वो एक्चुअली मुरसलुन ही के मानी में होता है, यानी जिसको के भेजा गया हो. ठीक है, तो हमने कोई भी रसूल नहीं भेजा आपसे पहले भी इल्ला सिवाय इसके इन्नहुम लयाकुलूना तामा, कि वो जरूर बिल जरूर खाना खाते थे. वयमशून फिल अस्वाक, और बाजारों में चलते फिरते थे. वजअलना बअबकुम लिबअदिन फितना, और हमने बना दिया तुम में से एक को दूसरे के लिए आजमाइश. अतस्बिरून, देखें कि साबित भी रहते हो कि नहीं, क्या तुम यानी साबित कदमी के साथ रहते हो हक के ऊपर। अतस्बर अ क्वेश्चन है, क्या, ठीक है ना, हमजा इस्तेफामिया है ये क्वेश्चन के लिए। तस्दिरूना, तुम सबर करते हो कि नहीं, ठीक है, क्या मतलब भाई, यहाँ पे तो बात हो रही है कि हमने एक दूसरे के लिए आजमाइश बना दिया तुम लोगों को, ठीक है, तो ये आजमाइश बनाने का मतलब क्या, सबर करना, इसकी आजमाइश बनाया है। तो हम तो सबर समझते हैं कि जब किसी के ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है तो वो उसके ऊपर सबर करता है, ये सबर को मतलब हम समझते हैं, ठीक है। आजमाइश के अंदर सबर का क्या मतलब, आजमाइश में पूरी उतरते हो कि नहीं, ठीक है ना, सही फैसला करते हो कि नहीं जब तुम्हारे ऊपर कोई यानी ऐसे हालात डाले जाते हैं, तो तुम सही फैसला करते हो कि नहीं और उस सही फैसले के ऊपर साबित कदमी से डटे रहते हो कि नहीं, इसको कहते हैं सबर। इसी को आसान अल्फाज में कहते हैं कि सबर का मतलब होता है नेकी के ऊपर जमे रहना और गुनाहों से बचते रहना, इसको सबर कहते हैं। तो अतस्बिरून, कि क्या तुम सबर करते हो कि नहीं। वकान रब का बसीरा, और तुम्हारा रब देखने वाला है, बसीर है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर एक बात करके क्लास खत्म करेंगे। क्या लिखा है उन्होंने कि आपने अब रूह जिस्म का मिलाप को कहा, तो क्या यहाँ पर इबादी उसी मानी में है क्या। हाँ, ये भी एक पॉसिबल पॉइंट हो सकता है कि ये जो उस वक्त इबादी कहा जा रहा है, तो क्योंकि मतलब नहीं, एक्चुअली ये वो बिल्कुल एक अलग डिस्कशन है, ठीक है, कि हाँ वो नफ्स से इबाद तो है ना, वो अल्लाह ताला के बंदे तो वो है ना, क्योंकि जिस्म भी उनके पास है और रूह भी उनके पास है, तो नफ्स से इबादी के तौर पर तो वो अल्लाह ताला के बंदे ही हैं, बेशक काफिर हैं लेकिन हैं तो अल्लाह के बंदे ही ना। लेकिन हम तो दूसरी बात कर रहे थे, हम तो एक्चुअली ये बात कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने ना मानने वालों को इबादी के लफ्ज से पुकारा नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक बनता है इस लफ्ज के अंदर, ठीक है ना, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, मेरा बेटा, इसमें मोहब्बत आती है, राइट, इस तरह से किसी को पुकारने में, ठीक है। तो इस वजह से ना अल्लाह ताला ने काफिरों को मेरे बंदे के तौर पर नहीं पुकारा, ठीक है ना, बल्कि अपने बेहतरीन बंदों को अल्लाह ताला ने इबादी, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, शैतान से खिताब करते हुए अल्लाह ताला ने क्या फरमाया था कि मेरे बंदे जो होंगे ना, राइट, जो मेरे बंदे होंगे उनके ऊपर ऐ शैतान तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। तो वहां पर अल्लाह ताला फखर के साथ उन ईमान वालों की बात कर रहे हैं कि जो के शैतान की मान के नहीं चलते, बिल्कुल ही नहीं मानते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिस इस आयत के अंदर तो अल्लाह ताला फिर उन लोगों का जिक्र कर रहे हैं ना कि जो के यानी काफिर थे, जो के बहक गए थे मेरे इन बंदों को, ठीक है। तो इस ये डिस्कशन ही बिल्कुल डिफरेंट थी, तो इस वजह से आपका जो ये पॉइंट है वो यहाँ पर रेलिवेंट नहीं बनता, ठीक है। अच्छा, बस आखिरी बात जो करके ख़त्म करनी थी आज की क्लास, क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, वो ये थी कि अल्लाह ताला ने हमेशा ही रसूलों को ऐसा बनाया कि जो के दूसरे इंसानों के मोहताज होते थे खाने पीने के मामले में, राइट, और बाकी अशियाए सर्फ, अशियाए खुर्दोनोश, राइट, जो कि बाजारों में मिलती हैं, दूसरे इंसानों के मोहताज होते थे, हमेशा ऐसा बनाया। तो कोई इसका जवाब अगर बस दे, और फिर बाकी हम डिस्कशन अगली क्लास में कर लेंगे कि अल्लाह ताला ने इंसानों यानी रसूलों को ऐसा क्यों बनाया, अल्लाह ताला ने रसूलों को कोई ऐसा क्यों नहीं बनाया कि दूसरे इंसानों से हट करके उनके अंदर ऐसी क्वालिटीज होती कि जो कि उनको दूसरे इंसानों से मटेरियली भी बड़ा बनाती, मटेरियली भी, ठीक है, कि उनके पास खजाने होते, बागात होते, उनके पास जो है वो यानी माल दौलत और हर किस्म की जो है ना वो यानी फिजिकल वो भी होती, बॉडी भी होती, बड़ी सबसे सबसे ऊंचे नजर आते, دوسرے لوگوں کے مقابلے میں، بڑی بڑی ان کے پاس مسلز ہوتی ہیں، مسل پاور بھی ہوتی ہیں ان کے پاس، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسے رسولوں کو کیوں نہیں بنایا؟ ٹھیک ہے، تو کیونکہ وی ہیو ٹو فالو دیم ان آل دیز ایسپیکٹس، وی ہیو ٹو فالو دیم ان آل دیز ایسپیکٹس، کیا مطلب؟ فرق نہ کرنے کے لیے، برابری کے لیے. اچھا چلیں، اس کو ہم بس اتنا کہہ کر کے کلاس ختم کریں گے کہ یہ ایک بڑی لمبی ڈسکشن ہے، تو ڈسکشن پہ نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نئے لوگ ہیں ان کو ہم نا اس پٹری کے اوپر ڈالیں، اس ڈسکشن کی پٹری پہ ڈالیں، ٹھیک ہے نا. ابھی تو یہ پٹری بہت لمبی چلے گی، ٹھیک ہے، لیکن پٹری پہ چڑھ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ پھر سفر کا آغاز ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو وہ پٹری کیا ہے جس کے اوپر ہم ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو، اور ہمارا اصل مقصد ہی ہے سارا کا سارا یہ کوئی کلاس کرنے کا، ٹھیک ہے نا. وہ کیا پٹری ہے؟ کیا کیا جب تک کیا لکھا لوگوں نے؟ بیکاز پیپل کڈ سے سنس دے آر اسپیشل اٹ از ایزیئر فار دیم ٹو ڈو اللہز اطاعت، اینڈ سنس وی ڈونٹ ہیو دوز کوالٹیز اٹ از ڈیفیکلٹ فار اس. اچھا ٹھیک ہے، بڑا اچھا جواب دیا آپ نے ویسے، کیونکہ آپ ہمارے لیے اس پر حسنہ بہترین نمونہ ان آل ایسپیکٹس. پتا نہیں، یہ تو اس سوال کا جواب نہیں بنتا. تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایس کی سنت پر عمل کرنے پر کمزور بھی عمل کر سکیں. یہ بھی بڑا اچھا جواب ہے ویسے پچھلا والا بھی، کیونکہ ہمارے لیے اس پر حسنہ بہترین نمونہ ان آل ایسپیکٹس ہوں. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اچھا جواب ہے، کیونکہ ان کے امت کو مشکل ہوتی اگر نبی جو ہے وہ بالکل ہی آؤٹ آف دا بلو قسم کی چیز ہوتے تو امت کو مشکل ہو جاتی. اچھا، اگر وہ عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے تو سب اٹریکٹ ہو جاتے بآسانی. ہاں وہ تو پھر ٹھیک ہے، وہ یعنی تگڑا سا کوئی فرشتہ ساتھ ہوتا تو پھر تو وہ ایسی خوف کے مارے سارے کے سارے ماننے پہ مجبور ہو جاتے. اچھا، آزمائش کے لیے پروفٹس وڈ ناٹ لائک نارمل پیپل، دین پیپل وڈ ورشپ دا پروفٹس. اچھا، ہر قسم کے لوگوں کے لیے مثال بننا تھا، ورنہ لوگ ان چیزوں سے مروب ہو کر ایمان نہ لاتے. ویئر ٹو لیو آور ایس ایم ایس نمبر. اچھا، وہ واٹس ایپ گروپ کا اگر آپ حصہ ہے نا تو اس واٹس ایپ گروپ کے اوپر جو میسیجز آتے ہیں نا تو اس میسیج کا آپ رپلائی کر دیں، ٹھیک ہے. وہ پرائیویٹ رپلائی کرنے کا آپشن ایک ہوتا ہے واٹس ایپ کے اندر، اس میں آپ اپنے نمبر وغیرہ دے سکتے ہیں. مان کے چلنا ہی پڑتی. اچھا جی، تو جہاں سے میسج آ رہے ہیں صرف اس کو آپ پرائیویٹلی اپلائی کر سکتے ہیں، سب کو نہیں آپ اپلائی کر سکتے اس واٹس ایپ گروپ کے، ورنہ پھر وہ ایک عجیب تماشا شروع ہو جاتا ہے، سبھی کچھ نہ کچھ بھیجنا شروع کر دیتے ہیں. امت کے مسکین لوگوں کے لیے فالو کرنا آسان ہو. آخرت کا رخ الگ ہے اور دنیا کا الگ، تو نبی آخرت کی طرف ان کا لاتے ہیں. اچھا، so that these material things cannot distract them from their real duties and people may not be influenced because of their viable powers. دنیا کا رش. اچھا، اچھے جواب ہے ماشاءاللہ. اب ذرا مردوں کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں کہ پھر عام انسانوں کا ان پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا. ہاں بھائی، اچھا جواب ہے. یہ دوسری خواتین میں بھی اسی طرح کے سارے تقریباً جواب ہیں. possible to set up at end brief of the day for ayahs discussed. یہ ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ اس اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ریکارڈنگ کی آسانی فرمائی ہے نا، تو اس کو اگر استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے مثال بنایا، سنت ادا کرنا مشکل ہو جاتا. اچھا ٹھیک ہے، تو یعنی نبیوں کو جو ہے نا وہ بہت ہی ایکسٹرا آرڈینری قسم کی ظاہری طور پر، ٹھیک ہے، مٹیریلی جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈینری قسم کی چیز بنا کر کے نہیں بھیجا، ٹھیک ہے. تو اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. آپ نے جو وجہ لکھی ہیں وہ بھی اچھی وجوہات ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایک اور بھی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو پٹری والی بات کری تھی نا کہ آپ کو پٹری پہ چڑھانا مقصود ہے، ٹھیک ہے نا، وہ کیا بات ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جو ہے نا، ہر انسان کے اندر ایک خدا بیٹھا ہوتا ہے، ایک خدا، ٹھیک ہے نا. اصلی خدا نہیں ہوتا، وہ جھوٹا خدا ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا، وہ اس کی انسپریشنز، ایسپریشنز، اس کے ایمبیشنز یہی ہوتے ہیں کہ میں ہی اصل خدا بن جاؤں، मैं ही असल खुदा बनूं, ठीक है ना। तो ये क्या चीज होती है हमारे अंदर, ठीक है, जो कि झूठा खुदा, जो कि खुदा बन करके रहना चाहता है, ठीक है, इसको कहते हैं नफ्स, ठीक है, इसको कहते हैं नफ्स। ये नफ्स जो है ना, ये खुदाई का दावेदार होता है, ठीक है ना। ये चाहता है कि बस मैं ही मैं और कुछ भी नहीं, ना अल्लाह, ना रसूल, ना कोई और, ना कोई नेक लोग, ना आलिम, ना मुफ्ती, ना शेख, कुछ भी नहीं हो, बस मैं ही मैं हूं। अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूं, राइट। ये जो रब, झूठा रब, रब का दावेदार जो हमारे अंदर, हर एक के अंदर जो बैठा हुआ है ना, राइट, इसका एक इलाज है। ये जो ये इस धोखे के अंदर मुब्तला है, इस बीमारी में मुब्तला है, तकब्बुर वाली बीमारी में, कि बस उसी को माना जाए और हर एक की नफी कर दी जाए, ठीक है ना। ये तो असल में अल्लाह ताला का दावा है। असल में अल्लाह ताला डिजर्व करते हैं इस मुकाम को कि सिर्फ अल्लाह ताला का इस बात किया जाए, बाकी सब की नफी कर दी जाए। लेकिन हमारे अंदर ये जो छोटा बैठा हुआ है ना, छोटू साहब, राइट, ये चाहते हैं कि नहीं, ये असल बने, ठीक है। तो इनको जो है ना, फिर इनका इलाज करना पड़ता है, इनकी इस बेवकूफी का, राइट, ये जो बच्चे साहब अंदर बैठे हुए हैं ना, इनकी इस बेवकूफी का, इनकी इस गलत फहमी का इलाज करना पड़ता है। और ये इलाज कैसे किया जाता है, इस इलाज के लिए जो है ना, वो इनकी ठुकाई लगानी पड़ती है, इनको दबाना पड़ता है, इनको मारना पड़ता है, इस चीज को जो है ना, वो कुचलना पड़ता है। तो इसको कुचला कैसे जाता है, इसको कुचला ऐसे जाता है कि इसको किसी छोटे के सामने, ठीक है, किसी नॉर्मल इस जैसे किसी बंदे के सामने झुकाना पड़ता है। इस छोटा सा मतलब ये नहीं कि किसी बच्चे के सामने झुकाना पड़ता है, छोटे का मतलब ये है कि नॉर्मल अपने जैसे इंसान के सामने, जो कि खाता पीता भी हो, जो कि बाजारों में भी चलता हो, जो कि बीवियों से शादी भी करता हो, जो कि छोटे बच्चों के लिए जो है वो मिंबर से उतर करके उनको अपने गोद में भी उठा लिया करता हो, जिसको आंसू भी आया करते हो, जो कि हंसता मुस्कुराता भी हो, राइट, जिसको कि कजाए हाजत की भी जरूरत पड़ती हो, राइट, एकदम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, इसके सामने सरे तस्लीम खम जब करता है ना ये, तब इसकी इस तकब्बुर का, इस धोखे का, इस गलत फहमी का इलाज होता है, तब कहीं जाकर के इसका इलाज होता है, और तब ये अपनी असल हकीकत को समझता है। वरना इसके बगैर यही, अब ये अपने ही आप को खुदा समझता है, ये अपने ही आप को असल समझता है, कुल समझता है, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने जो दुनिया के अंदर नबियों का निजाम रखा है ना, ये इंसानों में से रखा है, और इंसानों में से भी ऐसे इंसान जो कि हमेशा जो है वो याकुलून अस्साम व यमशी बिल अस्वाक करने वाले इंसान थे, ठीक है, ताकि हर इंसान के अंदर जो एक नफ्स होता है, उस नफ्स की इस्लाह हो जाए, वो अपने आप को खुदा मानना छोड़ दे और वो असल खुदा की खुदाई के सामने झुकना शुरू कर दे, ठीक है ना। तो ये नफ्स की इस्लाह के लिए भी ये, यानी एक मत इसकी नफ्स की इस्लाह भी है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम आज की क्लास खत्म करते हैं, बाकी डिस्कशन इंशाल्लाह करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।